हम सभी बाबा के बहुत ही लाडले सिकिलदे भाग्यवान बच्चे, जिनको स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए सवेरे सवेरे दूर देश से आते हैं, तो आज बाबा ने मुरली में अनेक प्रकार की बातें हमें बताई। बाबा ने पूरी मुरली में ड्रिल भी करवाई, तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान, सभी प्रकार की बातें बाबा ने बताई, अपनी महिमा भी बताई, तो भारत की महिमा भी, गीता की महिमा भी, सारी बातें मुरली में थी। जितना मुरली हम ध्यान से सुनते हैं, मुरली की बातों को याद रखते हैं और दिन भर में चिंतन करते हैं, उतना मुरली का नशा रहता है। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई है, तो ईश्वरीय पढ़ाई को हमें किस रीति से पढ़ना है, थोड़ा इसकी वैल्यू को हम समझें और उसके बाद में हम मुरली का आपस में लेन देन करते हैं। तो ये पढ़ाई सारे कल्प में केवल एक बार पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई, जो स्वयं भगवान निराकार शिक्षक साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हमें पढ़ाते हैं, तो कितनी वैल्यूबल ये पढ़ाई है और हम इस पढ़ाई के द्वारा क्या बनते हैं। नर से नारायण बनने की पढ़ाई, जो कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य देवता बन सकते हैं, डॉक्टर बैरिस्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ये सब बनने की पढ़ाई तो होती है, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनने की पढ़ाई। तो ऐसी पढ़ाई, इस पढ़ाई का हमें कितना रिगार्ड होना चाहिए। जिस प्रकार से लौकिक दुनिया में भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो बड़े रेगुलर नियमित टाइम पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी है, और उनका कभी भी एब्सेंट मार्क नहीं होता है, टीचर का सम्मान भी रखते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा भी हमें जो ये पढ़ाते हैं पढ़ाई, तो हमारी बुद्धि में कब रहेगी, जब बुद्धि स्वच्छ बनेगी, है ना। तो उसके पहले देखिए आधा घंटा योग होता है 6:30 से 7 बजे तक, तो बुद्धि को प्योर बनाने के लिए योग की जरूरत है। तो योग करना, जैसे स्कूल में क्या करते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में भी पहुंचना जरूरी होता है ना। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, स्वच्छ बन जाती है। जैसे कहा जाता है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बुद्धि पवित्र होगी योग से और एकाग्रता हमारी बढ़ेगी, तो फिर मुरली की बातें, ज्ञान की धारणा हमारे जीवन में सहज हो जाएगी। तो इतना अटेंशन दे करके हम मुरली को सुने। फिर मुरली सुनते समय कई बार क्या होता है, थोड़ी थकान या कभी उबासी आती है या कभी आंखें बंद हो जाती है। देखिए टीचर सामने पढ़ाने वाला कौन है, जब स्थूल में भी कोई सामने अच्छा टीचर होता है पढ़ाने वाला, तो उसका रिगार्ड कैसा होता है, सजग होकर के बैठते हैं। तो हमारी पढ़ाई, इस पढ़ाई में 21 जन्मों की कमाई भी समाई हुई है। तो ये पढ़ाई आंखें बंद करके पढ़ने की नहीं है, सजग होकर खुली आंखों से अलर्ट एक्टिव और एक्यूरेट बनकर ये पढ़ाई पढ़ने वाली है ना। इस पढ़ाई से 21 जन्मों का भाग्य हमारा बन रहा है, ये पढ़ाई एक जन्म के लिए नहीं है। तो इतना रिगार्ड रखते हुए और फिर मुरली को ध्यान से सुने। तो इसके लिए बार बार में अपने आप को सीट पर स्थित करें। पहले तो ये सीट जो स्थूल है उस पर भी एक्टिव होकर बैठना, और शरीर रूपी भ्रकुटी के बीच में आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान रहे, उसको स्मृति ये रहे कि मैं कौन हूं पढ़ने वाली। निराकार शिक्षक निराकार आत्मा को पढ़ा रहे, तो आत्मा को अपना भी भान हो, अपनी स्मृति का भान हो, तब हम देह अभिमान से परे हो सकेंगे और मुरली की बातें हमारी बुद्धि में ठहरेगी। तो किस प्रकार से सोल कॉन्शियस रहना, हर एक मुरली में बाबा देही अभिमानी बनने की बात जरूर बताते हैं। तो मुरली बार बार में ड्रिल करने की है कि जैसे कि बाबा ने सतयुग की बातें बताई, तो सतयुग से कैसे हम सीढ़ी उतरते आए, किस प्रकार से आते आते कलयुग में बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि बन गई, बिल्कुल नीचे गिरावट में आ गए, तो कैसा ऐसे बने, कैसे रावण की प्रवेशता हुई, सारी बातें बाबा मुरली में सुनाते हैं। तो मुरली का मंथन करना, मंथन का मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ भी देखेंगे तो मुरली मंथन, मंथन माना जैसे मथन करते हैं, दूध को बिलोते हैं तो क्या होता है, मक्खन निकलता है ना, तो मक्खन निकलता है और मक्खन सार रूप में आ जाता है ना, और मक्खन से क्या मिलता है, मक्खन को अगर खाएंगे तो क्या होगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो उसी प्रकार से मुरली को भी बार बार में घोटना कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोट घोट कर नशा चढ़ाना, स्वयं ही स्वयं को नशा चढ़ाना। जैसे आयुर्वेद में दवाई होती है तो उसको क्या करते हैं, बार बार में घोटते हैं, अधिक से अधिक जितना बारीक करेंगे, उसका चूर्ण बनाएंगे, उतना ही वो दवाई कारगर होगी, उतनी ही वो दवाई अधिक वैल्यूबल हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए होम्योपैथी दवाई होती है तो उस पानी को जितना बार बार बोतल को हिलाते हैं तो उसकी कैपेसिटी, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, तो मुरली को रिविजन करना, विजन का मतलब होता है कि पिक्चर देखना, है ना, हम अनेक प्रकार के पिक्चर देखते हैं दिन भर में, लेकिन मुरली सुनते हुए कि मुरली कौन सुना रहा है और किस प्रकार की बातें जो सुना रहे हैं बाबा, उन पिक्चर को अपनी आंखों के सामने देखना कि आज कौन कौन सी बातें बताई। जैसे सतयुग की बात बताई तो आप सतयुग में चले जाइए, उस विजन को देखिए, वो पिक्चर अपनी आंखों के सामने ले आइए। फिर बाबा ने सूक्ष्म मतन की बात बताई तो सूक्ष्म मतन को अपनी आंखों के सामने देखिए। फिर बाबा ने जैसे कि अनेक प्रकार की भारत की महिमा भी आप आज की, तो वो चीजें भी अपने सामने लाइए। 84 जन्मों की सीढ़ी की बात बाबा ने बताई तो वो पिक्चर ले लीजिए। तो आंखों के सामने ये चीजें जो हम पिक्चराइज करके देखेंगे तो फिर वो भूलना कठिन होगा, भूलना कठिन होगा, है ना, नहीं तो क्या होता है, याद रखना कठिन होता है, लेकिन ऐसी चीजों को याद रख लेना। कई बार मुरली में बाबा कई प्रकार के नाम बताते हैं, जैसे कई बार दादियों को याद करते हैं, कई बार पंछियों को, इनको जानवरों को, पक्षियों को, बिच्छू को, सर्प को, भ्रमरी को, अनेक प्रकार की बातों को याद करके और मुरली को याद रखा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि अनेक बातों में चले जाते हैं, जैसे कि बाहर गए और दूसरी बात में कहीं लग गए तो मुरली बाबा क्या बोलते हैं, यहां से गए और मुरली कहां चली जाती है। तो मुरली को बार बार में अपने चिंतन में लाना और आपस में मुरली की ही लेन देन करना, जैसे गोपियों का गायन कलयुग के अंत तक भी चलता है कि कौन सी मुरली, वो तो काठ की मुरली का गायन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये संगम युग की मुरली जिसका गायन कलयुग के अंत तक भी चलता है कि मुरली के पीछे गोपियां अपना सारा काम छोड़ करके, काम समय पर पूरा करके मुरली सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आ जाती थी। तो वो गायन किसका है, हम सभी का, जो हम यहाँ पर बैठे हैं, जो मुरली का आनंद रोज लेते हैं। अब बाबा ने आज की मुरली में जिस प्रकार से बताया कि मीठे बच्चे कहाँ से मुरली शुरू हुई, सुनाएंगे कोई, याद है? बाबा ने कहा बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है उसको बुद्धि में कायम रखना है। कायम रखना मना स्थिर रहे बुद्धि में, इधर उधर नॉलेज खिसक न जाए। फिर बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है और विचार सागर मंथन करना है। तो मंथन करने से जो मक्खन निकलेगा उससे ताकत मिलेगी। जैसे बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि देखो गाय को भी इतना अक्ल होता है कि वो खाना खाने के बाद में फिर उसको क्या करती है, उगारती रहती है। तो उसी प्रकार से मुरली की पॉइंट को भी बार बार में अपने सामने स्मृति में लाए कि आज बाबा ने क्या कहा। और एक दूसरे से जब लेन देन करते हैं तो मुरली की बात का लेन देन करें तो होगा हमारा विचार सागर मंथन सहज हो जाएगा। जैसे गोताखोर होता है सागर में नीचे जाकर के गोता लगाता है, जितना गहराई में जाता है उतना ही हीरे मोती माणक पन्ना ये सब चीजें मिलती है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा विचार सागर मंथन करते हैं और दूसरी बातें भी अपोजिशन करती है, मायावी बातें भी जिनसे हमारी युद्ध है। बाबा ने कहा मैं युद्ध करना भी बच्चों को सिखाता हूं, इसलिए बाबा को आज कौन सा नाम मिला, युधिष्ठिर। हमें युद्ध में स्थित करने वाला, युद्ध सिखलाने वाला, युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला, युद्ध के अनेक प्रकार के डायरेक्शन हमें देते हैं कि माया पर विजय किस प्रकार से प्राप्त करनी है। अच्छा, फिर आज बाबा ने बताया इस पढ़ाई का ला कौन सा है, कौन सा ला है इस पढ़ाई का, आज के प्रश्न का, नियमित पढ़ाई पढ़ना, रेगुलर पढ़ाई पढ़ना, कभी भी पढ़ाई मिस न करना, एक दिन की मुरली भी मिस न हो। और उसके बाद में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो मुरली को वापस अपने घर में जाकर के भी फिर मुरली का रिवीजन खुद करते हैं, होमवर्क भी करते हैं। बाबा ने आज जो अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की स्मृतियां दी, उनको हमें फिर वापस अपनी स्मृति में लाना, अच्छी पॉइंट्स को फिर डायरी में नोट करना। बुद्धि रूपी डायरी में नोट तो करना ही है, साथ साथ में अगर स्थूल डायरी में भी दो चार पॉइंट हम नोट करते हैं तो वो दिन भर में हमारी बुद्धि में छप जाती है बातें। तो ये पढ़ाई बाबा ने कहा कि सात रोज का कोर्स है ना, सात रोज का कोर्स करके ये पढ़ाई कहां पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। और आजकल तो कितना आसान हो गया, मुरली हमारे हर एक के मोबाइल में, हर एक की पॉकेट में प्रवेश हो जाती है, देखो ऑटोमेटिकली। कितना ऊंचा भाग्य है ये भी, साइंस का भी कितना हम सुख ले रहे हैं। लेकिन उस मुरली को पास में होते हुए भी हमें कितना नशा है उस मुरली का, और उसको कितना हम वापस मुरली को रिवीजन करते हैं, कितनी बारी मोबाइल निकाल करके मुरली की पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, या आज का वरदान दो लाइन का याद रख लेते हैं, या आपस में एक दूसरे को दस जनों को मुरली की बात का लेन देन करते हैं, मुरली की बात को पूछते हैं कि आज की मुरली में आपको क्या अच्छा लगा। तो आपस में जब लेन देन होगा तो वो मुरली हमारे चिंतन में सहज रहेगी, है ना। जैसे छोटी छोटी स्मृतियां होती है, पुराने टाइम में क्या करते थे दादियां, एक दूसरे को क्या पूछती थी, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है ना। तो मुरली की पॉइंट को भी हम पूछते हैं तो स्मृति आ जाती है और आपस में एक दो का थैंक्स मानते हैं कि आपने मुरली की पॉइंट याद दिलाई, धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। तो मुरली के बारे में कितना गायन है। बाबा ने एक बारी दादी जानकी जी ने अपनी बात कुछ बाबा को बताई थी कि बाबा कि मुझे कौन ये दूसरे सभी दूसरे लोग याद करते हैं, मैं तो किसको याद नहीं करती हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची वो भी याद करे तो क्यों। तो ऐसी बात कुछ आई तो बाबा ने कहा कि बच्ची मुरली को बार बार में पढ़ना है। तो बोला कि बाबा बारह बारी मुरली को पढ़ूंगी। बाबा ने कहा तीन बारी मुरली पढ़ो। तो बोला बारह बारी पढ़ूंगी। तो कितनी मुरली की कदर थी, दादी प्रकाशमणि जी को जब भी देखते थे, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को सोने के पहले तो मुरली जरूर पढ़ करके दादी सोती थी। तो ये मुरली का गायन हमारा अभी का है, तो अभी हम जितने अच्छे संस्कार भर लेंगे, जितना इन दिव्य गुणों को मुरली के द्वारा धारण करेंगे, वही हमारे 21 जन्म तो क्या, लेकिन मैं तो कहूंगा कि 84 जन्म के अंत तक भी हम बाबा के बच्चे। बाबा कहते कि आधा दुख और आधा सुख, परंतु 3/4 हम बच्चे सुख प्राप्त करते हैं इसी मुरली के कारण। तो ये गीता का ज्ञान है ना, जिसमें बाबा ने आज अनेक प्रकार की गीता की महिमा भी बताई कि गीता ज्ञान किसने सुनाया, कौन सुना रहे हैं। अभी स्वयं शिव परमात्मा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, और इसी गीता ज्ञान का फिर क्या किया, भक्ति मार्ग में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण की महिमा क्या है वो भी आज की मुरली में बताई कि श्री कृष्ण ऐसा 16 कला संपन्न कैसे बने, अभी संगम युग की पढ़ाई के द्वारा ऐसे बने। तो आज के वरदान में बाबा ने, जाने वालों को लग रहा है जल्दी हो रही है तो हम समय पर पूरा ही करेंगे, आज के वरदान में बाबा ने क्या बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम भव है। कैसे, हाँ, किसको निशाना बनाएंगे, बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों को, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। बाबा ने कहा है कि एक बाप को ही फॉलो करना है, और जो नियम और मर्यादाओं के ऊपर चलते हैं वो नियम मर्यादाओं को कभी भी तोड़ते नहीं है, नियम और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उल्लंघन नहीं करते कभी भी नियम मर्यादा का। तो ऐसे बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। और बाबा ने क्या बताया आज की मुरली की विशेष पॉइंट, बाबा कौन है आज की मुरली से बताओ, हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराना, ये हमारा उद्देश्य है। और बाबा कौन है पढ़ाने वाला, विचित्र विदेही। दो बातें बाबा की विशेष, कि बाबा विचित्र है और विचित्र आत्माओं को हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा विदेही है तो हमें भी क्या बनना है, देह के भान से परे विदेही बनना है। अच्छा, आज का स्लोगन कौन सुनाएंगे, प्रश्नों में समय को व्यतीत नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं गंवाना है। तो बहन जी ने जैसे बताया कि भाई कविताएं लिखता है, एक छोटी सी कविता आप भट्टी वालों के लिए, बाबा ने कहा भट्टी वालों के लिए विशेष एकांत है यहाँ पर, अच्छा विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो एक 2 मिनट में ये लास्ट कविता सुन के फिर आप सभी जाएंगे ब्रेकफास्ट पे। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, आत्मा सच्चा सोना बनती, भस्म होती खाद, स्वयं की राजा बनती और हो जाती आजाद, बोध सभी हल्के होते, लाइट का मिलता ताज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, सर्व शक्तियां भर जाती, आत्मा होती आबाद, फिर से धनी बन जाती है जो बन चुकी मोहताज, इंद्रियां वश हो जाती, शांति का आता राज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, 5 विकारों की बुस्ती, 63 जन्मों की आग, अलबेलेपन की नींद से होते सभी सुजाग, भट्टी में पकने से मीठी बन जाती आवाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, रियलाइजेशन हो जाती, चेतनता जाती जाग, तत्व सभी सहयोगी बनते, पानी पृथ्वी आग, आने वाली बातों का भी लग जाता अंदाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, योग भट्टी से होता सारी दुनिया से वैराग, आधा कल्प से लगे हुए मिट जाते सारे दाग, एकांत का अनुभव होता, करते काम काज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज, बट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। ओम शांति, वंदे मातरम।